ஓம் சாந்தி. सबसे पहले आप सभी से निवेदन है, जो पीछे बैठे हैं भाई बहने वो सामने अपना स्थान ग्रहण कर लें। हम सभी पिछले 3 दिन से समृद्ध एवं सशक्त समाज की कुंजी अध्यात्म विषय को लेकर के यहां आध्यात्मिक ज्ञान मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं। आप सभी को भी बहुत आनंद आ रहा होगा और आज एक बहुत सुंदर विषय लेकर के यहां उपस्थित हुए हैं, काम इन क्राइसिस, संकट में संयम या तूफानों में तोहफा कैसे बनाएं। क्योंकि सामाजिक संस्थाओं से, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हम सभी यहां उपस्थित हैं, तो समाज सेवा करते हुए विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां, अनेक प्रकार की समस्याएं हम फेस करते हैं, तो कैसे अध्यात्म को जीवन में धारण कर उनका सामना कर सकते हैं और समाज को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इस विषय पर आज हमारे वक्तागण अपने विचार रखेंगे। मैं सबसे पहले आज के हमारे महानुभावों को आमंत्रित करता हूं। आज के हमारे चेयरपर्सन हैं ब्रह्मा कुमार डॉक्टर प्रेम वसंत भाई जी, आपसे निवेदन है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज के मुख्य वक्ता परमादरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शैलजा दीदी जी फ्रॉम छतरपुर, आपसे भी निवेदन है आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और आज के हमारे माननीय अतिथिगण हैं श्रीमती शालू दुग्गल जी फ्रॉम दिल्ली, मिस्टर गोपती कुमार मिश्रा फ्रॉम मिर्जापुर, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। ब्रह्मा कुमारी अन्नपूर्णा बहन फ्रॉम इंदौर, ब्रह्मा कुमार दीपेश भाई ओआरसी दिल्ली, आप सभी से निवेदन है कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम सभी 3 मिनट ईश्वर पिता की याद में बैठ करके करते हैं, 3 मिनट ईश्वर पिता की। और आज हमारे इंस्पिरेशन के लिए ब्रह्मा कुमार बाबू भाई फ्रॉम कच्छ भुज, आपसे निवेदन है।
सब सर
शांति। आज के हमारे अतिथि गणों का बैजेस के द्वारा स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करता हूं ब्रह्मा कुमारी बहनों को। हमारे चेयरपर्सन माननीय ब्रह्मा कुमार डॉक्टर प्रेम वसंत जी, सभी तालियां बजा करके स्वागत करें। आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं मिस्टर विभूति कुमार मिश्रा जी, मुख्य वक्ता परमादनीय राजयोगिनी शैलजा बहन जी, सम्मानित अतिथि बहन शालू दुगल जी, अन्नपूर्णा बहन जी, दीपेश भाई जी, हमारे बाबू भाई जी, आप सभी यहां इस व्याख्यान सत्र में उपस्थित हुए, सबसे पहले मैं परमपिता परमात्मा शिव बाबा का स्वागत करता हूं, साथ साथ आज के हमारे सम्मानित मंच का और आप सभी वक्तागणों श्रोतागणों का जो इस विषय पर उपस्थित हुए हैं सुनने के लिए, और पिछले तीन दिन से आप सुन रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे होंगे। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत, और भी स्वागत की कड़ी में निवेदन है, कुमारी तनुश्री फ्रॉम गुलबर्गा एक स्वागत नृत्य लेकर के हमारे बीच में आ रही है।
Thank you. പ്രണനം സംഗീതലീലോത്സവം
धन्यवाद कुमारी तनुश्री। हम सभी जानते हैं कि हमारा समाज एक समय था सुख शांति आनंद से भरपूर और दिव्य गुणों से संपन्न समाज था। आपस में स्नेह प्यार भ्रातृत्व की भावना से परिपूर्ण हमारा समाज था। वास्तव में एक मूल्यनिष्ठ समाज जिसको कहें जहां नैतिक आध्यात्मिक और चारित्रिक मूल्यों का आवास था, ऐसा हमारा समाज था। लेकिन आज अगर हम समाज की हालत बताने लगेंगे तो कहा जाता है कि पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। आज के समाज में ईर्ष्या द्वेष घृणा इतनी प्रचुर मात्रा में लोगों में भरी हुई है, जिसे एक दूसरे को नीचा दिखाना, डिसरिगार्ड करना, अपमान करना आदि आदि अनेक प्रकार की सामाजिक कुरीतियां बढ़ती जा रही हैं और इसके कारण हमारे आपसी संबंध टूट रहे हैं। लोग आज भौतिक संसाधनों के दौड़ में, अंधी दौड़ में भाग रहे हैं, जिसका मूल कारण समाज की सबसे छोटी से छोटी इकाई मानव, क्योंकि व्यक्ति से मिलकर के ही घर परिवार समाज का निर्माण होता है। तो आज आवश्यकता है हमें एक समृद्ध और सशक्त समाज का, अगर हम निर्माण करना चाहते हैं तो समाज की छोटी इकाई मानव मन को ठीक करना होगा। और आप सभी पिछले 2-3 दिन से इसका अभ्यास कर रहे होंगे और ये अनुभव भी कर रहे होंगे कि हम अपने मन को केवल अध्यात्म के द्वारा ही ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता हमारी आंतरिक शक्तियों का विकास करती है और आंतरिक शक्तियों से ही हमारा मनोबल बढ़ता है, सकारात्मकता आती है जीवन में। आज हम भारत देश के साथ साथ अपने पड़ोसी देश नेपाल के विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए भाई बहन यहां पर एकत्रित हैं। हम सभी जानते हैं कि समाज सेवा का क्षेत्र बहुत विशाल है और सेवा करते हुए अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, संकट उत्पन्न होता है, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो आज आवश्यकता है हमें उन परिस्थितियों में रहते हुए समाज को श्रेष्ठ दिव्य बनाने की, संयमित जीवन जीने की। यह कला प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पिछले 88-89 वर्षों से भारत देश के साथ साथ विश्व के 140 से भी अधिक देशों में अपने आध्यात्मिक नैतिक और मानवीय मूल्यों के द्वारा इस समाज को समृद्ध और सशक्त बनाने का कार्य निस्वार्थ भाव से कर रहा है। तो आज जो विषय है काम इन क्राइसिस, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे महानुभाव यहाँ पर एकत्रित हैं। तो आज के हमारे मुख्य वक्ता परम आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शैलजा बहन को मैं आमंत्रित करूंगा। आप छतरपुर से हैं और आप भोपाल जोन के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं समाज सेवा प्रभाग के। आपने बीएससी करने के बाद 1974 में आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े और 1977 में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपके नेतृत्व में अनेक सामाजिक अभियानों का आयोजन होता रहता है और आज इस बहुत सुंदर विषय को लेकर के हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। निवेदन है परम आदरणीय राजयोगिनी शैलजा जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अखिल ब्रह्मांड के नियंता परमपिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परमेश्वर पिता की प्रिय संतान, सम्माननीय मंच और सभा में उपस्थित सभी आदरणीय भाइयों और बहनों, आप सभी समाज सेवा में लगे हुए भाई बहनों का ब्रह्मा कुमारी परिवार एक बार पुनः तहे दिल से स्वागत और सम्मान करता है। उदार हृदय, रहम दिल की भावना लिए आप भाई बहनों की सोच में है, वह जीना भी क्या जीना है, जो खुद में जिए और मर जाए, जो काम किसी के ना आए। इसी सुंदर भावना के साथ समाज सेवा के कार्य में आप सभी लगे हैं। आप पिछले 3 दिनों से इस बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि मनुष्य को रोटी, कपड़ा, दवाई, कंबल आदि जो भी भौतिक वस्तुएं हैं, इन सब भौतिक वस्तुओं की समय परिस्थिति के अनुसार आवश्यकता होती है और इसमें हमें सहयोगी अवश्य बनना चाहिए। परंतु इस शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है, जो एक चैतन्य शक्ति है, जो सोचती है, अनुभव करती है, प्रयास करती है, उस आत्मा को सशक्त बनाए बिना हम एक सुखी, समृद्ध और सशक्त समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज की जो, जैसे आज का विषय है, आज की जो अनिश्चितता वाला दौर चल रहा है, अस्थिरता का दौर चल रहा है, जिस समय मनुष्य को यह भी पता नहीं है कि अचानक क्या होने वाला है, अचानक गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो जाएंगी, अचानक कोई कोरोना जैसा नया वायरस आ जाएगा, अचानक प्राइवेट कंपनियां छटनी करना शुरू कर देगी अपने कर्मचारियों की, अचानक परिवार के किसी सदस्य की डायग्नोस के आधार पर कोई बड़ी बीमारी सामने आ जाएगी, अचानक नेचुरल कैलेमिटीज के रूप में कहीं बाढ़, कहीं सूखा, कहीं भूकंप, कहीं तूफान, इन सब परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति के लिए हमें अंदर से पहले से तैयार होना होता है। समाज सेवा के क्षेत्र के अंदर में हम अंदर से सशक्त हुए बिना बाहर से समाज सेवा का कार्य अच्छी रीति से संपन्न नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी भाई जी ने बताया कि हम लोग विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हैं और विभिन्न तरीके से हम समाज सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। हमें याद आता है जब महात्मा गौतम बुद्ध जी के शिष्य आनंद ने उनसे निवेदन किया था कि मैं समाज के बीच में जाकर सेवा करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा था आप सोच लीजिए, जब आप वहाँ लोगों के बीच में जाएंगे लोग आपकी बातों को नहीं सुनेंगे, वो आपका तिरस्कार भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तिरस्कार ही तो करेंगे, मैं शांत रहूंगा, मैं अपने सहनशीलता के परिचय द्वारा फिर भी अपनी बात देने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा वो केवल तिरस्कार नहीं करेंगे, हो सकता है वो आप पर कुछ प्रहार भी करें। बोले कोई बात नहीं, प्रहार ही तो करेंगे, हो सकता है वो आपके आपके मृत्यु का कारण भी बन जाए, वो इतने उग्र हो जाए, उत्तेजित हो जाए, क्योंकि लोग नहीं पसंद करते हैं कोई हमें आकर कोई शिक्षा कोई सावधानी कोई। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर सेवा करते करते भी मेरे प्राण चले जाए तो मुझे मंजूर है। तो जब तक हम इस मन स्थिति में नहीं आते हैं, इतने लेवल तक अपने समर्पण के लिए हम तैयार नहीं होते हैं, हम समाज सेवा के कार्य को अच्छी रीति से संपन्न नहीं कर सकते हैं। जब कभी हमारे जीवन में ऐसी कोई नकारात्मक परिस्थिति आती है तो चूंकि हम अंदर से कमजोर हैं, तो कई बार घबराहट में अपने शांति को अपनी धैर्यता को अपने साहस को हम खो देते हैं और जीवन में कोई गलत निर्णय भी हमसे हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा पिता ने हमको ये जो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाई है, जैसे कि आज का टॉपिक है काम इन क्राइसिस, तो ऐसी क्राइसिस की परिस्थिति में हम अपने आप को कूल एंड काम रख सके, हम अपने आप को शांत रख सके, संयमित रख सके, स्थिर रख सके, उसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान के कुछ बिंदुओं के बीच की हम अभी चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हम अपने मन के अंदर में ये एक चिंतन लेकर जाएं। आपने पहले दिन का जो यहाँ सुबह का मेडिटेशन सेशन अटेंड किया होगा, जिसमें आत्मा का परिचय दिया गया, तो उसमें बताया होगा आत्मा के 7 गुणों के बारे में। तो हम सबसे पहले ये मन के अंदर चिंतन करें, मैं एक शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान पिता की संतान हूँ। ये स्मृति के आधार पर हम अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करते हैं और कैसी भी विपरीत परिस्थिति में हारी हुई बाजी को भी हम जीत सकते हैं। इसका बहुत सुंदर उदाहरण रामायण में हमको मिलता है कि हनुमान जी जब अपनी शक्तियों को अपने स्वरूप को भूल गए थे, उस समय बूढ़े जामवंत ने उन्हें उनकी शक्तियों की पहचान कराई, वो क्या कर सकते हैं उन्हें स्मृति दिलाई और उसके आधार पर उनके अंदर जैसे शक्ति का संचार हुआ और एक सेकंड में वो 100 योजन फैले समुद्र को पार कर गए। तो अंदर की स्मृति हमारे अंदर शक्ति का जागरण करती है। भगवान कहते ये संसार है ही स्मृति और विस्मृति का खेल। तो इस आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर हमें अपने अंदर की सुषुप्त शक्तियों का ज्ञान होता है। दूसरा बिंदु जो भगवान हमें पढ़ाते हैं, ये हम स्मृति में रखे, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं स्टेबल हूँ, परिस्थितियां चाहे जैसी भी आए लेकिन मैं अपनी शांति और अपनी स्थिरता के आधार पर विजयी बन सकती हूँ। जिस प्रकार हम देखते हैं शांत और स्थिर जल के अंदर तले में पड़ी हुई वस्तु भी हमें स्पष्ट दिखाई देती है, उसी प्रकार से शांत और स्थिर मन स्थिति में हमें जो समाधान है, जो समस्या हमारे सामने आई है उसका समाधान भी हमें स्पष्ट अनुभव होता है। आवश्यकता होती है मन की एकाग्रता की, मन की स्थिरता की। एक बार एक ऑफिस के अंदर एक जो अधिकारी था वो जल्दी जल्दी, शाम का टाइम था, ऑफिस से सबके जाने का टाइम हो रहा था, उसने भी जल्दी जल्दी अपना बैग, अपनी फाइलें वाइलें सब समेटी। अचानक उसका ध्यान गया अपनी कलाई पर और उसने देखा मेरी जो रिस्ट वॉच है वो तो है ही नहीं, कहाँ गिर गई है। काफी इधर उधर देखा टेबल पर फाइलों में, उसे नहीं देखी। वो घड़ी उसे बहुत प्रिय थी, उसके किसी खास ने उसे गिफ्ट की हुई थी, तो थोड़ा परेशान होने लगे। जो साथी कर्मचारी थे उन्होंने कहा सर क्या बात है, तो बताया। वो भी सब हेल्प करने लगे, सभी ने मिलकर उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो घड़ी किसी को भी नहीं मिली। थक हार करके, निराश होके सोचा अब कल देखेंगे, और सभी ऑफिस के गेट से बाहर निकलने लगे। तब एक बूढ़ा बुजुर्ग जो पियून था उसने कहा सर आप मुझे 2 मिनट का टाइम दे, मैं भी कोशिश करके देखता हूँ। वो अकेला अंदर गया और जो साहब का कैबिन था वहां जाकर के वो शांत होकर के बैठा और 2 मिनट के अंदर वो घड़ी लेके बाहर आया। सभी को बड़ा आश्चर्य लगा, आपको ये घड़ी कहाँ से मिल गई? उसने कहा कि मैं जब वहां अंदर गया तो मैं बिल्कुल शांत मन से एक जगह बैठ गया और मैं कोशिश करने लगा कि घड़ी की टिक टिक कहीं से सुनाई दे रही है। अचानक मुझे सुनने में आने लगा, मैं उसी दिशा में आगे बढ़ा और देखा किसी फाइल के अंदर वो घड़ी दब गई थी। इसलिए फाइल को इधर उधर भले कर रहे थे लेकिन वो उसके अंदर दबी घड़ी किसी को दिख नहीं रही थी। तो किस आधार पर उसने उसको ढूंढा? केवल मन को एकाग्र करके, शांत मन से उसने कोशिश की उस घड़ी की टिक टिक को सुनने की। तो समस्या का समाधान होता है मन एकाग्र चाहिए। एक बार एक समुद्री जहाज रास्ते में चलते चलते अचानक उसका इंजन बंद हो गया। जो भी शिप पर मौजूद कर्मचारी थे, मैकेनिक्स थे, उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन वो इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। बहुत परेशान हो गए। फिर कैप्टन ने जो है पैसेंजर से कहा आप में से कोई आगे आकर हेल्प कर सकता है? एक बुजुर्ग व्यक्ति आया, उसने कहा मैं कोशिश करके देखता हूँ, मुझे बस आप एक हथौड़ी दे दीजिए। वो गया, उसने चारों तरफ से इंजन का बहुत सूक्ष्मता से निरीक्षण किया, बहुत ध्यान से उसको देखा, कहीं कहीं उसने हथौड़ी को ठक ठक करके भी देखा और एक जगह पर पहुंचकर उसने 2-4 बार उस हथौड़ी से उस पर प्रहार किया, इंजन स्टार्ट हो गया। सभी लोग बहुत खुश हो गए। तो सबने कहा ये तो कमाल हो गया। तो कहा हम कुछ आपको देना चाहते हैं। कैप्टन ने कहा कितना हम आपको सहयोग कर दें? उसने कहा 10,000 रुपया। सबने कहा बस 2 हथौड़ी आपने मारी है और उसके 10,000 रुपया बहुत ज्यादा नहीं है? बोले नहीं, हथौड़ी मारने के तो मात्र 2 रुपए हैं लेकिन 9,998 रुपए इस बात के हैं कि हथौड़ी कहां पर मारनी है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो फोकस है, कहते मन एक लेंस की तरह है, फोकस जिसके ऊपर इस लेंस का फोकस होगा, मन का फोकस होगा, वही चीज हमें बड़े रूप में दिखाई देगी। अगर हमारा फोकस समस्या पर है, प्रॉब्लम के ऊपर में है, तो समस्याएं हमें बहुत बड़ी नजर आती हैं। लेकिन अगर हमारा फोकस सॉल्यूशन की तरफ है, समाधान की तरफ है, हम बहुत सही रूप में, वास्तविक रूप में सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमें अटेंशन देने से सहज सॉल्यूशन मिल जाता है। इसीलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहुत प्यारा एक गीत बना हुआ है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बहुत है, बड़ी है, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। जब हम मुश्किलों को बड़ा समझ लेते हैं, मान लेते हैं, बात ही बहुत बड़ी है, समस्या ही बहुत बड़ी है और इसके लिए इसका तो हल होना बहुत मुश्किल है, तो जब समस्या बड़ी है तो वही हमें दिखाई देती है, हमारा ध्यान सॉल्यूशन की तरफ जाता ही नहीं है। इसीलिए कहा दूसरा मंत्र हम याद रखे, मैं एक शांत स्वरूप और स्थिर आत्मा हूँ, स्टेबल हूँ। तीसरी बात है, मैं ईश्वरीय सुरक्षा कवच के अंदर हूँ। एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके व्यक्ति सोचता है कि मैं सुरक्षित हूँ, फिजिकली वो सोचता है कोई भी गोली बंदूक आदि मेरे ऊपर असर नहीं करेगी, लेकिन ये जो विपरीत परिस्थितियां और समस्याएं हैं इनसे सुरक्षित रहने के लिए ईश्वर पिता की स्मृति, ईश्वर पिता की शक्तियों की मदद की हमें जरूरत होती है। हमने भक्ति में देखा है कि जब लव और कुश दोनों बच्चे जब घोड़ा बांध लिया था अश्वमेध यज्ञ का और बड़े बड़े महारथी उनके सामने आ रहे थे, लक्ष्मण हैं, भरत जी हैं, हनुमान जी हैं, बड़े बड़े महारथी योद्धा आ रहे थे सामने, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने परमात्म स्मृति से अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच तैयार कर लिया और उस सुरक्षा कवच से टकराकर सामने वाले योद्धाओं का तो तीर टकराकर वापस लौट जाता था और ये जो यहां से तीर चलाते थे वो अपना काम पूरा कर लेता था। तो ये जो सुरक्षा कवच है परमात्म स्मृति का, ये हर प्रकार की परिस्थितियों से हमारी रक्षा करता है। इसीलिए ये आवश्यक है कि हम अपने आप को कि परमात्म स्मृति के अंदर लेकर आए। एक बार जब अर्जुन मत्स्य वेधन के लिए खड़े हुए, कृष्ण ने उनसे कहा, अर्जुन सावधान, पूरी एकाग्रता से तुम्हारी आंख मछली की आंख पर ही केंद्रित रहे, ध्यान रखना। अर्जुन ने कहा सारे काम मैं करूंगा तो केशव आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा मैं वो करूंगा जो कोई नहीं कर सकता है, मैं तुम्हारे लिए जल को स्थिर रखूंगा, शांत रखूंगा, जिसमें तुम्हें उस मछली का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे। तो जब हम अपने आप को भगवान की सुरक्षा कवच के अंदर महसूस करते हैं, परमात्म स्मृति के अंदर महसूस करते हैं, तो हमें कई बार हमें ये एहसास भी नहीं होता है कि किस तरीके से परमात्मा हमारी रक्षा करते हैं, किस तरीके से परमात्मा हमारी मदद करते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि हम अपने आप को महसूस करें मैं परमात्मा पिता की छत्र छाया के अंदर हूँ। उस स्मृति के आधार पर हम सहज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। चौथी बात है कि मैं परमात्मा की संतान हूँ। केवल ये स्मृति मुझे अपने जीवन के अंदर निश्चिंत रखती है। एक बार हवाई जहाज के अंदर में सभी लोग सफर कर रहे थे, जहाज अपनी गति से चल रहा था, अचानक उसमें कुछ खराबी आई और वो ऐसे डामाडोल होने लगा। सारे पैसेंजर्स बहुत घबराने लगे, अपने अपने तरीके से प्रेयर करने लगे। उसी जहाज में एक छोटी सी बच्ची 5-6 साल की होगी, बहुत निश्चिंत होकर अपने ही खिलौनों से खेलने में मगन थी। लोगों ने उसको वॉच किया, बाद में जब सब शांत हो गया तो किसी ने उस बच्ची से पूछा, बेटा सभी लोग बहुत डर रहे थे, आपको डर नहीं लगा? बोले नहीं, क्यों? उसने बड़े सहज भाव से कहा, मेरे पापा ही तो पायलट है ना, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे कुछ होने ही नहीं देते। तो एक बच्ची का ये विश्वास उसे निश्चिंत रख सकता है। अगर हमारे अंदर में हो कि परिस्थिति चाहे जैसी भी आए, क्राइसिस की बात होती मनाती, संकट की स्थिति वाली बात है, ऐसे समय पर भी अगर हम उस परमात्मा की छत्र छाया में अपने को महसूस करते हैं, तो हमें भी ये जीवन के अंदर में हर परिस्थिति में ये हम निश्चिंत रह सकते हैं कि हमारा रक्षक, हमारा पिता स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता है। तो ये स्मृति हमें कैसी भी क्राइसिस की स्थिति में कूल एंड काम, एकदम शांत मनस्थिति वाला, स्टेबल रख सकती है। इसी तरीके से वहां कि परिस्थितियां आती हैं जाने के लिए, कहते हैं परिस्थिति जो पराए द्वारा, पराए कारणों से आई है, अगर हमारी स्व स्थिति स्ट्रांग है तो परिस्थिति के ऊपर हम सहज विजयी बन सकते हैं। इसलिए अंदर से अपने आत्मिक सशक्तिकरण की, आध्यात्मिकता द्वारा सशक्तिकरण की बहुत आवश्यकता है। जिस समय राम जी वनवास पर थे तो पहले ही एक महात्मा जी ने उनसे कहा था कि राम तुम्हें आगे चल करके बहुत आसुरी शक्तियों से, विपरीत परिस्थितियों से, मायावी शक्तियों से तुम्हें सामना करना पड़ेगा, इसीलिए तुम तपस्या द्वारा अपने अंदर शक्तियों को अर्जित करो। और राम जी ने तपस्या के मार्ग को अपनाया। कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था कि इस युद्ध में आगे चल करके बहुत मायावी शक्तियां आएंगी और उसके लिए तुम्हें तपस्या के द्वारा अपने आप को सशक्त करने की आवश्यकता है। आज हम सभी देख रहे हैं जो भी क्राइसिस आज हमारे आसपास हमको देखने में आ रहे हैं उनका कारण क्या है। जो भी समस्याएं हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, हम देखते हैं मेजॉरिटी मानव द्वारा उत्पन्न है। हमारे अपने क्रोध के संस्कार, हमारे अपने ईर्ष्या के संस्कार, हमारा अपना आवेग, उत्तेजना, इरिटेट होना, ये हमें किस हद तक ले जा सकता है और समस्या कितनी बड़ी खड़ी कर सकता है, उसके लिए, उसका सामना करने के लिए हमें अंदर से क्या होना होगा? अध्यात्म के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा हमें अपने आप को पहले ही एम्पावर करना होगा, सशक्त करना होगा। हम परिस्थिति आने का इंतजार नहीं कर सकते हैं कि जब ऐसी कभी बात आएगी तब हम समय निकाल लेंगे। जैसा कि अभी तक हमारी ये धारणा रही है कि जब बुजुर्ग हो जाएंगे, जब इन सब जिम्मेवारियों से निवृत्त हो जाएंगे, फिर हम तपस्या का मार्ग, आध्यात्मिकता का मार्ग चुनेंगे। लेकिन भगवान कहते हैं अभी जब हम एक्टिव हैं, क्रियाशील हैं, फील्ड में हैं, हमें इसी समय पर इन शक्तियों की आवश्यकता है और इसीलिए ये सारा ही प्रयास हमें अभी ही करना है। और इसके लिए ना तो आप दो तीन दिन से सुन रहे हैं, ना तो हमें घर बार छोड़ने की आवश्यकता है, ना हमें किसी और प्रकार से त्याग करने की आवश्यकता है। हम अपनी सभी जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए, समाज सेवा के कार्य को करते हुए भी केवल थोड़ा सा आधा घंटे का, एक घंटे का समय निकालकर मेडिटेशन के द्वारा, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा अपने आप को सशक्त बना ले और उस स्मृति में रह करके सेवाएं करेंगे तो निश्चित ही सेवा का कार्य ऐसा है जो अपने साथ दुआएं लेकर आता है, शक्तियां लेकर आता है, ताकत लेकर आता है और हम सभी सहज रूप में उसमें पास हो सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी, आपने बड़े विस्तार से सामाजिक सेवा करते हुए आने वाली परिस्थितियों को परमात्म स्मृति का सुरक्षा कवच दिया। और परमात्मा में अगर विश्वास है और अटेंशन से सॉल्यूशन का परिचय दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने वक्तव्य के माध्यम से यही बताया कि समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरा निवेदन है, आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर बहन शालू दुगल जी से, आप फाउंडर हैं दृष्टि उत्थान ट्रस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट और एमएलए रिप्रेजेंटेटिव हैं दिल्ली से, और विभिन्न प्रकार की सेवाएं आपने कोरोना टाइम में की। निवेदन है आज के विषय पर अपने वक्तव्य रखने के लिए बहन दुगल जी।
ओम शांति। मंच पे विराजमान सभी आदरणीय गण और सामने उपस्थित सारे समाज सेवकों को मेरा नमन नमस्कार। आज का विषय संकट के समय में शांति। बहुत सरल विषय, बहुत कठिन विषय, सरल भी और कठिन भी। सरल कैसे? एक 3 साल के बच्चे से अगर आप कहेंगे कि बेटा ये किताब लो और ABCD पढ़ के सुनाओ, जो बच्चा अभी स्कूल भी नहीं गया, उसके ऊपर संकट आ गया, ये क्या है? ये तो फाड़ने की चीज है, खेलने की चीज है या हवा करने की चीज है? ये मम्मी क्या कह रही है, क्या पढ़ना है? उसके लिए वो ABCD कठिन। पर जब वो बच्चा 6 महीने स्कूल जाने लगे, जब उसकी मम्मी उससे कहे कि ये ABCD पढ़ के सुनाओ, बिल्कुल मम्मी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, उसके लिए वो संकट सरल। क्या फर्क है इस कठिन और सरल में? सिर्फ ज्ञान का फर्क है। जैसे बच्चे को ज्ञान मिला कि ABCD पढ़ी जा सकती है, ये किताब मेरे पढ़ने के लिए है, मुझे ज्ञान देगी, वो खुशी खुशी उस किताब को पढ़ने लगा। एक इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। आप सबके बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं। किस किस के हैं स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे, जरा हाथ ऊपर करिए। सबके हैं। एग्जामिनेशन डे से पहले जब बच्चा घर से निकल रहा होता है, क्या कहते हैं आप? बेटा जो सरल, जो आते हुए सवाल हो वो पहले करना, कहते हैं? कहते हैं, एक बारी हाथ खड़ा करके बताइए, सब कहते हैं कि जो आते हुए सवाल हो वो पहले करना और जो कठिन सवाल है उसे बाद में रख देना, ताकि जब कठिन सवाल तुम पहले अटेम्प्ट करोगे तो तुम्हें एक प्रेशर फील हो जाएगा, तुम संकट में आ जाओगे और जो तुम्हें आता हुआ ज्ञान होगा वो भी क्या होगा, चला जाएगा। तो पहले आप सरल सवाल करिए। यहां 3 दिन से हम हैं और हमें यहां पे जो ज्ञान दिया जा रहा है वो सरल है, शुरुआती है। आप एक आत्मा है, आपको संकट के समय में शांत रहना है, ये आपको सिखाया जा रहा है। आपको दूसरों से प्रेम करना है, प्रेम भावना रखनी है। ये सरल ज्ञान आप यहां से जब लेकर जाएंगे तो जीवन में आने वाले कठिनाइयां जितनी भी हैं उसका सामना करने की क्षमता, ऊर्जा आप में अपने आप आएगी। आपके घर में कोई मेहमान आने वाला होता है, आपसे वो, हाँ जी दीदी कहाँ रहते हैं, कहाँ से आऊं जो मैं सरलता से पहुंच जाऊं, आप क्या बोलते हैं? अरे भाई उस रेड लाइट से मत टर्न करना, आज मंगल बाजार लगा होगा। कहते हैं, आप क्या चाहते हैं? कि जो आपके घर में आने वाला मेहमान है वो शांति से आपके घर पहुंच जाए, उसे कहीं कोई ट्रैफिक ना मिले, चाहते हैं? अगर फिर भी वो आपकी बातों को अनदेखा करके दूसरी रेड लाइट से आता है और बोलता है मैं तो फंस गया, क्या बोलते हैं? मैंने तो पहले ही कहा था, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि उस रास्ते में ट्रैफिक मिलेगा, तुम लेट हो जाओगे। ऐसे ही ईश्वर आपको समय समय पर ज्ञान देता है कि ये गलत कार्य है, इसे मत करो, आगे जाकर तुम कठिनाई में पड़ जाओगे। फिर क्या करेंगे, कठिनाई में पड़ गए फिर ईश्वर को रिश्वत देंगे, 201 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, मुझे इस कठिनाई से निकाल दो। कहते हैं इतना मन स्वार्थी हो जाता है कि अगर एक ईश्वर से बात नहीं बनती तो दूसरे मंदिर चले जाते हैं। ऐसे ऐसे स्वार्थी हैं हम। कठिनाई के समय में ईश्वर की सिखाई हुई बातों को अनदेखा करके हम ईश्वर ही बदल देते हैं। तो यहां जो आपको सिखाया गया या सिखाया जा रहा है वो आपको ये बताया जा रहा है कि हर कठिनाई के समय में आपको शांत रहकर अपनी सकारात्मक ऊर्जा को और बढ़ाकर कैसे उस संकट का सामना करना है। जिस प्रकार से बच्चे को तीसरी कक्षा में जाते जाते बहुत सारा ज्ञान आ जाता है, आजकल मैं एक काउंसलिंग सेशंस लेती हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, स्कूल में हम लोग जाते हैं, जिन बच्चों को शू लेस बांधने नहीं आते उन्हें स्मार्टफोन चलाना आता है। मानते हैं आप, आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे, शू लेस बांधना नहीं आता होगा, वो मम्मी बांध रही है, लेकिन मम्मी के फोन पर सारी एप्लीकेशंस उसको आती होंगी। इतने स्मार्ट हैं बच्चे, इतने स्मार्ट हैं, उन्हें पता है कि आपसे काम कैसे निकालना है अगर वो कम नंबर लाए हैं। मम्मी मेरे नहीं पूरी क्लास के कम नंबर आए हैं, ब्लेम गेम। जब हम संकट में होते हैं हम ढूंढते हैं किसको ब्लेम करें, इसको करें इसको करें, नहीं नहीं मेरा काम तो अच्छा होना ही था, मैं तो बिल्कुल सही था, वो जो मेरा साथी था वो टाइम से नहीं पहुंचा इसलिए मैं संकट में घिर गया, इसलिए मुझ पर परेशानी आ गई। ये सही नहीं है। हमारे कर्मों का फल जब हमने भोगना है, अच्छे कर्मों का फल अगर हमने भोगना है तो संकट में भी हमें ही अपनी परिस्थितियों का सामना करना है। किसी को ब्लेम करके, किसी पे थोप पर हम बच नहीं सकते। बहुत सारे जगह पर जब हम सेशंस करने जाते हैं बहुत सारी मदर्स ये हमसे बोलती हैं कि जब मेरा बच्चा बीमार होता है, मतलब मेरे बच्चे पे जब संकट आता है तो मैं खुद बीमार हो जाती हूं, मुझ में इतनी क्षमता नहीं है, अपना संकट तो फेस कर ही नहीं पा रहे हैं, हम अपने सगे संबंधियों का संकट भी उनको भी सही राह नहीं दिखा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मन विचलित है, मन फोकस नहीं कर पा, भटक रहा है कि शॉर्टकट कहां से मिले। काउंसलिंग के दौरान बहुत सारे ऐसे 17-18 साल के बच्चे हैं जो स्ट्रेस है, मुझे मेरे एग्जाम है इसलिए मैंने सिगरेट पीनी शुरू कर दी, स्ट्रेस खत्म करना है। उन्हें पता ही नहीं है कि मन की शांति क्या होती है, उन्हें पता ही नहीं है कि ये रास्ता कितने नशों, ये नशा जो है मन की शांति का, ये कितने नशों से बेहतर है, उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें ज्ञान ही नहीं है। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि इस मन से मुझे अपना विचार रखने का सौभाग्य मिला। मैं अपने दिल्ली से मैं आई हूं, A3 पश्चिम बिहार सेंटर से मैं जुड़ी हुई हूं, हम लोग अभी भी बहुत सारे बच्चों को संकट से यानी कि नशा से मुक्त करने के लिए अभियान कर रहे हैं स्कूलों में, और ब्रह्मा कुमारी की दीदी सविता दीदी के साथ मिलकर हम अभी बहुत सारे स्कूलों तक पहुंच चुके हैं। मैं इतनी ज्ञानी तो नहीं हूं कि आपको ये बताऊं कि मन की शांति कैसे मिलेगी, लेकिन एक चीज जो मुझे ब्रह्मा कुमारी से जुड़कर सबसे अच्छे से समझ आई कि धन कमाएंगे तो धन मिलेगा, धन कमाएंगे तो धन मिलेगा, लेकिन अगर ज्ञान कमाएंगे तो सुख शांति धन वैभव शिक्षा स्वास्थ्य सब मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आपने अपने अनुभवों के द्वारा कठिनाई में भी शांत कैसे रहें और उसमें आप जो सेवा कर रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज को साथ लेकर के, तो अवश्य ही सफलता मिलती होगी। मेरा निवेदन है आदरणीय ब्रह्मा कुमार बाबू भाई, आप रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं सोशल विंग के भुज के, और कच्छ गुजर क्षत्रिय समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। कच्छ गुर्जर क्षत्रिय समाज सार्वजनिक ट्रस्ट गांधीधाम के कारोबारी मेंबर्स हैं, और आप कच्छ गुर्जर क्षत्रिय समाज नूतन एजुकेशन कन्या विद्यालय मादापुर के उपाध्यक्ष हैं, और आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। आप अपने तन मन धन से समाज की सेवा में लगे हुए हैं, समाज को श्रेष्ठ बनाने के लिए, समाज को समस्याओं से मुक्त कर एक दिव्य समाज के निर्माण का संकल्प आपका है बाबू भाई जी।
ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव, जो हमारे शिव परमात्मा हमारे पिता भी हैं, हमारे शिक्षक भी हैं, हमारे सद्गुरु भी हैं, ऐसे परमात्मा के प्रिय संतान आदरणीय मंच तथा मेरे सामने समाज सेविका और समाज सेवक, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हम परमात्मा को बोलते हैं वो कल्याणकारी है, और आप समाज सेवक भी कल्याणकारी हैं, सबका कल्याण करते हो आप, अपना स्वार्थ नहीं होता है आपका, आप सब कल्याण के लिए निमित्त बनते हो, आप फरिश्ते हैं, आप नेक्स्ट टू गॉड हो, जैसे भगवान कल्याणकारी हैं वैसे आप भी कल्याणकारी हैं, और भगवान के आप नजदीक हो क्योंकि आप समाज का कार्य कर रहे हो, तो आप आपके ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। जैसे आज का जो विषय है कि जो तूफान वो तोहफा लाता है, मैं आपको बताऊंगा वो कि कैसे तोहफा, एक तूफान है वो तोहफा बन जाता है, वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप में से जो पद पर हैं आप, तो आपको सामने से पद मिला है वो हाथ उठाए, कोई भी संस्था में हो या एक क्लब में हो कहां भी हो, आपको सामने से पद मिला है वो हाथ उठाए, बहुत कम है। अगर आपको पद के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ी है वो हाथ उठाओ, पद के लिए आपको मेहनत करनी पड़ी है, अच्छा ठीक है। तो मेरा कहने का यह है कि हम विश्व सेवाधारी हैं, जैसे परमात्मा विश्व सेवाधारी है हम भी विश्व सेवाधारी हैं, क्योंकि हम समाज के लिए हम जीवन जी रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम अपने लिए कर रहे हैं, नहीं, आप समाज के लिए कर रहे हो, तो आप स्वयं को आप फरिश्ता समझो कि मैं फरिश्ता हूं, जो फरिश्ता है ना वो उठता रहता है, और नेक्स्ट टू गॉड आप परमात्मा के नजदीक हो, तब तो आपको समाज के आप पद पर हैं, जैसे परमात्मा श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं तो हमको भी श्रेष्ठ कार्य करना है, और कर रहे हो इसलिए तो आप यहां पर पहुंचे हुए हो। मैं आपको थोड़ा सा मेरा एक अनुभव बताता हूं। 72 या 73 में जब ब्रह्मा कुमारी का ये गुजरात राज्य में जो भुज कच्छ है, बताते हैं कि अमिताभ बच्चन ने बताया था कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, वो कच्छ में रहने वाला मैं हूं। 72 में जब ब्रह्मा कुमारी का नाम निशान नहीं था तब मुझे थोड़ा सा ये ज्ञान मिला, और ये ज्ञान ऐसा मिला कि दिल में छा गया कि परमपिता परमात्मा शिव आप भारत पर दिव्य अवतरण कर चुके हैं, हमारी ब्रह्मा कुमारी बहने या संस्था यही सबको बताते हैं कि परमात्मा शिव का भारत भूमि में दिव्य अवतरण हो चुका है, और ये भारत में 5000 वर्ष पहले जो सतयुग था, फिर त्रेता युग आया, द्वापर युग आया, कलयुग आया, अभी कलयुग का भी परिवर्तन होकर के फिर वापस ये सतयुग आएगा। तो मुझे भी ऐसा दिल में छा गया, मैं कोई सोशल वर्कर नहीं था उसी समय, तो मैं पढ़ाई करता था, तब मुझे ये ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान मिला, तो कि लगा कि नहीं स्वयं परमात्मा का अभी वातावरण ऐसा है कि भगवान का दिव्य अवतरण हो चुका है। तो मैं क्या करता था कि जैसे आप समाज सेवी हो तो आप समाज के लिए कुछ करते हो, तो मुझे भी दिल में हुआ कि मैं भी भगवान का संदेश सबको दूं। तो हमारे समाज के लोग को, गांव को, हर जगह पर परिवार को, सबको ये ज्ञान देने लगा, तो सब लोग क्या बोल रहे हैं कि ये तो क्या बोलते, ये तो पता नहीं उसका मगज क्या बोलते, दिमाग खिस गया है। तो मुझे बहुत परेशान करने लगे, मैंने सबको ये ज्ञान देने शुरू कर दिया तो गांव वाले भी बहुत परेशान करने लग गए, मुझे समाज वाले भी परेशान करने लग गए, इतना तक के परिवार का और गांव का मैंने लकड़ियां भी खाई है, बहुत मारे खाई है मैंने, क्योंकि आगे बढ़ना है तो कुछ सहन भी करना पड़ेगा। लेकिन मेरा जो दिल था वो परमात्मा की ओर था कि जो परमात्मा का कार्य है कि विश्व कल्याण करना, तो हम सबका भी ये कार्य है कि कल्याण करना, सिर्फ परिवार का नहीं लेकिन विश्व का, या तो आप जो जिस समाज से आए हैं, जिस क्लब से आए हैं, जिस सोसाइटी से आए हैं, तो सोसाइटी की जवाबदारी आपके ऊपर है। अगर हम बदलेंगे तो सोसाइटी बदलेंगी, हम बदलेंगे तो समाज बदलेगा, हम बदले समाज बदलेगा तो विश्व बदलेगा, तो हरेक के ऊपर ये जिम्मेवारी होती है। तो मैंने ये सोचा कि मेरी ये जिम्मेवारी है कि शिव परमात्मा का संदेश सबको देने के लिए। तो इसलिए जैसे जैसे मैं कार्य आगे बढ़ाता गया, त्यों त्यों समाज वाले भी बहुत परेशान करने लग गए, और गांव वाले भी, खुद परिवार वाले भी। मेरा समय ऐसा भी आ गया कि 6 मास तक मैं 600 रोटी खाई है मैंने, 6 मास तक, और 6 मास तक सिर्फ रोटी और गुड़ खाया है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी जो मींस के अपनी जो धारणाएं होती है खाने पीने की, वो खाने के पीने की जो धारणा में क्या होता है कि हम लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं लेकिन घर वाले सब खाते हैं, तो वो मुझे खिलाने के लिए वो छाछ में भी लहसुन डाल देते हैं तो हम नहीं खा सकते हैं, प्याज भी डाल देते हैं, कुछ न कुछ करते तो हम नहीं खाते हैं, तो हम क्या करें? मुझे कार्य करना है, शिव परमात्मा का आदेश है, बच्चे तेरे को विश्व का कल्याण करने के लिए निमित्त बनना है। जैसे बताते हैं एक दीप से दीप जलता है, तो हमारी सबकी जवाबदारी है, नहीं है? हाथ खड़ा करो आप सबकी सोशल विंग के हैं साहब, तो आपकी जवाबदारी है, आप यहाँ से जाएंगे तो आप जवाबदारी लेकर के यहाँ से जाना कि मैं जिस सोसाइटी से आया हूँ, जिस सोसाइटी से या जिस क्लब से मैं आया हूँ, तो मेरी ये जिम्मेवारी है कि सबको हम पर जीवन को परिवर्तन करें और समाज को हम आगे लावे। तो मेरे लिए भी बहुत परेशानी आ गया, इतने तक कि मारने तक, तीन दिन मैं हॉस्पिटल में रहा, मारने तक भी प्रयत्न हुआ, पर लेकिन जो मैं सच्ची अपने जीवन के लिए मैं मानता था कि मैं सच्ची एक मीरा हूँ, तो मीरा को क्या हुआ? जेर का प्याला राणा ने दिया था लेकिन वो पी गई, कुछ नहीं हुआ। तो मैं भी यही समझता हूँ कि मैं एक फरिश्ता हूँ, मैं एक सच्ची मीरा हूँ। तो आप अपने जो जहाँ से भी समाज से आप आए हो, तो आप यहाँ से लक्ष्य लेकर के जाना कि मेरा भी जीवन का परिवर्तन करना है और साथ साथ में मेरा समाज का, मेरा जो भी है वो सबको आप जिम्मेवारी लेकर के जाना। ऐसे नहीं कि हम ये ज्ञान सरोवर से नीचे आबू रोड गए, वो जो खुशियां थी आपके जीवन में, जहाँ से ये लक्ष्य रखा आपने, प्रतिज्ञा की, और यहाँ आबू रोड में छोड़ के चले जाओ, और क्या करे हम तो मींस के खाते पीते रहेंगे, ऐसे नहीं। आप यहाँ भगवान ने आपको बुलाया है, तो आप जरूर से यहाँ से जो ब्रह्मा कुमारी आप 3 दिन से आप सुन रहे हो, तो आपके जीवन में कुछ न कुछ धारण करके, प्रतिज्ञा करके यहाँ से जाना, तो जितने भी तूफान आएंगे ने वो तोहफा बन जाएंगे। मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरे शुरुआत की जिंदगी कैसी थी। मैंने 125 रुपया तनख्वाह था, और आज भगवान के कार्य में हम तन मन धन से कार्य करते हैं तो हमको कहाँ से कहाँ बिठा देते हैं। तो मैं आपको ये विनती करता हूँ कि आप कैसे भी यहाँ से प्रतिज्ञा लेकर के जाना, और जो हमारा जो कार्य है विश्व परिवर्तन का, तो आप उसमें साथ और सहयोग देना। मैं एक बहनों को एक छोटी सी एक बात बताता हूँ। बहने लोग जो मींस के हम जो रसोई बनाते हैं, उसी समय टीवी कौन चालू रखते हैं? सच्चे या भगवान का घर है, सच्चे दिल से हाथ ऊंचा करना, पिक्चर के या दूसरा कुछ चालू हो तो बताना। क्या है कि आप जब रसोई बनाते हैं तब भगवान का गीत बजना चाहिए, तो जैसा जैसा अन्न वैसा मन हो जाएगा, तो आपका परिवार का जो है ना परिवार का जो प्रफुल्लित रहेंगे और उसका जीवन भी बदल जाएगा। अगर जो आप टीवी में जो भी चलचित्र हैं या सिनेमा देखते हो और रसोई बनाते हैं तो उसकी असर भाइयों पर आती है, बच्चों पर आती है। तो प्लीज ये बहनें भी यहाँ से प्रतिज्ञा बाबा के कमरे में जाकर के प्रतिज्ञा लेकर के जाना और अपना भी परिवर्तन करना और साथ साथ विश्व परिवर्तन के लिए। आपके जीवन में कितने भी तूफान आएंगे ने वो तोहफा बन जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि कितनी भी कठिनाई आई लेकिन आज वो कठिनाई को पार किया, भगवान का साथ मिला, तो आज आपके सामने मैं बैठा हूँ। ओम शांति। आपने जो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय ने मुझे ये चांस दिया उसका भी खूब खूब शुक्रिया अदा करता हूँ। ओम शांति। मैं आप सब फरिश्तों को नमन करता हूँ, आप नेक्स्ट तो गॉड हो, आपको नमन करता हूँ और यहाँ से प्रतिज्ञा लेकर जाना, ऐसी मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद बाबू भाई जी, आपने कम समय में ही गागर में सागर भरने का और सब में हिम्मत भरने का काम किया। अपने अपने वक्तव्य के माध्यम से बताया कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम, अक्सर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, कीमत और बढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब मेरा निवेदन है आज के हमारे अतिथिगण मिस्टर भूपति कुमार मिश्रा जी से, आप मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से यहाँ पहुंचे हैं, आप नेशनल प्रेसिडेंट हैं अखिल भारत रचनात्मक समाज दिल्ली के, और आप अपने क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की समाज सेवाएं करते रहते हैं और आज हमारे बीच में अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं। निवेदन है मिश्रा जी से।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद मंचस्थ सुधी भक्तागण और इस दिव्य सभागार में उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं को मेरा प्रणाम। अभी मैंने पूज्य दीदी का सुना, भाई जी का सुना, बहन शालू जी का भी सुना और कार्यक्रम के संचालक सुनील भाई भी बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। विषय कि संकट में शांति, तो सुख दुख जीवन का हिस्सा है, चक्र है, जन्म मरण दोनों ही चक्र है, तो संकट तो असंभव नहीं है, सुख भी असंभव नहीं है, तो यह संकट कट जाए और सुखा जाए यह कैसे संभव हो। तो और खास करके समाज सेवियों के लिए, समाज सेवी हर कोई बन जाए यह बहुत आसान नहीं है, सबके बस की बात भी नहीं है, तो उनके सामने तो संकट आता ही रहता है और उस संकट को समन करने में वे स्वयं सक्षम भी होते हैं। मेरा जहां तक मानना है और मेरा क्या मानना है, ये तो हमारे पूर्वजों ने हमारे ग्रंथों में लिखा है कि आपत्ति काल परखियेचारी धीरज धर्म मित्र और नारी। संकट है तो इसमें धीरज धर्म मित्र और नारी, जो सबसे पहला शब्द क्या प्रयोग किया गया, धीरज धैर्य, जो हमारा अपना है। फिर दूसरा हमारा क्या है, स्वयं का धर्म है। धर्म की बड़ी व्याख्या की गई है, धीयति इति धर्म, जो हम धारण करते हैं, क्या धारण करते हैं, कैसी अवधारणा बनाते हैं, तो धर्म भी हमारे साथ रहता है। तो पहला कि धीरज, जो जिस पर स्वतः हमारा बस है, और धर्म पर भी हमारा स्वतः बस है। इस धैर्य को, इस धीरज को हमने किस तरह से विकसित किया है, हमने धर्म कैसा धर्म धारण किया है, फिर मित्र आता है। मित्र क्या है, त्रास्ट शब्द जो अक्षर है लास्ट में है, मनेन त्रायते, मन से संकट काल में, विपत्ति काल में, जो आपके सुंदर वचन से भो सुंदरो भव, अच्छा बनो, तो मित्र की जो वाणी है उसके कैसा मित्र है आपका, वह मित्र किस तरह की वाणी का प्रयोग करता है। मित्र की वाणी बहुत ताकतवर होती है, शक्ति बड़ी है उसमें। तो मित्र, क्योंकि मित्र में त्र अक्षर का प्रयोग किया गया है, मन, मनेन, मनसा, मन से, शब्द मन से जो जिसका आपको शांति दे दे, आपके विपन्नता को, विक्षिप्तता को त्राण करे, वो मित्र है। और फिर नारी, ये दो, नारी पत्नी अर्थ में भी है, और पत्नी का तो बहुत बड़ा शाब्दिक अर्थ है, पत्नेन त्रायती थी पत्नी, पतन से जो आपको उबारती है वह पत्नी है, इसलिए सधर्म नहीं कहा गया उसको। पतन से, गिरने से जो आपको त्राण दे देती है वह पत्नी है। इसीलिए हम सब शक्ति कहते हैं, और अक्सर आप देखते हैं कि हम शिव शक्ति की चर्चा करते हैं, और इकारांत शिव में से यदि ई को हटा दीजिए तो वो शब हो जाएंगे, यदि ई न रहने से ही शिव शिव है, ई स्त्रीलिंग। तो नारी हमारा घर, हम अब इस पर निर्भर करता है कि हमारा धैर्य कैसा है, हमारे साथ संबल, हमारा धर्म कैसा है, और धर्म क्या क्या है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्, यही धर्म है। बहुत ज्यादा धर्म की व्याख्या नहीं, कहा आसानी से, विशालू बहन जैसे कह रही थी, किसी के लिए संकट और किसी के लिए वो, तो बस कि भाई आपने जो किया उससे दूसरे को परोपकाराय पुण्याय, भला यदि हो जाता है तो यह पुण्य है, और आपने जो किया उससे दुख पहुंचता है, पीड़ा पहुंचती है, तो यह अधर्म है। तो परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्, तो पुण्य पाप को इसको यह भी सुंदर, तो हमें क्या करना है? तो हमारा धर्म कैसा है? यदि हमारा धर्म हमने धारण किया है कि हमारे कहीं जाने से, कहीं उठने से, कहीं बैठने से, लोगों के बीच में जाने से, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाता है कि दूर से ही लोग ताकि देख लें कि हमने नमस्कार किया तो अपने डायरी में उनका कोई लिखने वाला हो, ये नहीं आपको बनना है। आपको तो सहजता से बनना है कि लोग देखे तो भी, ना देखे तो भी, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, जिस हर किसी को इतनी सहजता हो कि आपके पास आ सके, आपसे बात कर सके। यह जब आप अपने आप को, स्वरूप को विकसित कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए सहज बनते हैं। जो जब लोगों के लिए सर्व सहज बनेगा, सर्व सुलभ बनेगा, वो सुनेगा भी। जब सुनेगा तो कुछ बताएगा भी, और बताएगा कैसे? प्रेम से। अब आ गई बात कि संकट दूर कैसे करेंगे, ये तो हो गया। तो इसके लिए जो मूल मंत्र है, कुछ चीजें हमें अपने अंदर जो विकसित करनी है, सत्य का आचरण करें, सत्य का विजय होता है। ऐसे नहीं कह दिया गया, सभी महापुरुषों ने इतने तपस्या के बाद कहा सत्यम बध, फिर कहा प्रियम बध, अच्छे से बोलो, प्रिय बोलो। तो प्रेम में तो वही ताकत है। पीयूष प्रेम पान करो, करो प्रेम प्रदान, परमेश्वर प्रेम है, बिन प्रेम न बनोगे महान। परमेश्वर प्रेम है, और परमेश्वर के पाने के लिए हम सब लोग परेशान भी हैं, चिंतित भी हैं, और भटक भी रहे हैं। तो प्रेम हमारे अंदर सत्य का आचरण हो, प्रेम हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो, करुणा हमारे हृदय में रचती बसती हो, और धैर्य का, जैसे मैंने कहा ही, ये दो चार बातें हम अपने जीवन में अगर रखते हैं। मैं परसों से और भी मैं केंद्रों पे जाता हूं, हमारे मिर्जापुर में हमारी आदरणीय बिंदु बहन जी केंद्र संचालित करती हैं, प्रेम की भाषा बताती हैं, शांति का प्रवाह करती हैं। तो प्रेम की भाषा में और शांति के प्रवाह में तो इतनी शक्ति है कि संकट तो स्वतः मां के, मैं दो तीन मिनट ले सकता हूं, मां के, मां की शक्ति जो एक मात्र वत्सला की शक्ति जो है, प्रेम में कितनी ताकत होती है। प्रेम मतलब करुणा, वात्सल्यता, आप सब अनुभव करते होंगे। 80 साल की मां, 90 साल की मां, 100 साल की मां मृत सज्जा पर है, और कोई दिग्भ्रमित, पथ भ्रमित पुत्र समाज विरोधी आचरण में फंस गया, परेशान है, पुलिस ढूंढ रही है, रिश्तेदार अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं, पड़ोसी अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं, रात को भागते हुए पहुंचता है, अब मैं क्या करूं? दबे हुए पांव से मृत सज्जा पे पड़ी हुई मां के पास पहुंचता है, और मां समझ जाती है कि मेरा पुत्र आया है, और करुणा भरा वो हाथ सिर पे रखती है, और बस इतना ही तो कहती है वो, क्यों घबराता है, मैं हूं ना, इसको महसूस करिए। मां इतनी ही कहती है, क्यों परेशान है, सब सही हो जाएगा, मैं हूं ना। और उस पुत्र में, उस समाज विरोधी गतिविधि में रहने वाला पुत्र, समाज विरोधी आचरण करने वाला पुत्र रात भर चिंतन करता है, मां के गले से लगता है, और स्वयमेव पुलिस के सामने में जाकर के अपने आप को समर्पित कर देता है, और शपथ लेता है कि मैं आज से कोई गलत काम नहीं करूंगा। ये ताकत होती है, प्रेम की ताकत। साथियों, आप सब लोग अनुभवी हैं, और मेरी इतनी क्षमता नहीं कि मैं इतनी बातों को आपको बताऊं। बस एक छोटी सी कहानी है कि हम सब लोग पूरा कर लें, क्योंकि मुझे मंच का भी समय का ध्यान देना पड़ता है। अनुभव क्या कहता है हमारा? हमारा अनुभव यही कहता है कि हमने जहां कहीं भी अपनी प्रेम की ताकत को, अपनी सहनशीलता को पूर्णता प्रदान की है, हमारा संकट वहां दूर हुआ है। लेकिन जब हमने अपनी प्रेम की ताकत को पूर्णता नहीं दी, यानी विश्वास ही नहीं किया, कई संकट ऐसे आए हैं मेरे जीवन में भी। सभी लोग जो समाज सेवा में लगे हैं, कुछ न कुछ उनके जीवन में घटनाएं घटित हुई हैं, लेकिन उस समय में इसी प्रेम ने, इसी धैर्य ने साथ दिया है। तो हमारे अंदर की जो शक्ति, हमें हमारा संकट कैसे दूर होता है? मैं जब गांव में जाता था, 1.5 लाख से अधिक बहनें अभी साथ में हमारी हैं, घटना घटती है 90-91-92 की। एक मुसहर बस्ती में बच्चा बीमार है और बाप इसलिए घर पर नहीं है कि पुलिस ढूंढ रही है, बैंक से लोन लिया है। उस बच्चे की जान कैसे बचेगी? उस बस्ती में हाहाकार मचा हुआ है। मैं एक उस समय अच्छी सर्विस में था, गाड़ी रुक गई और जाके देखा बच्चे को, जहां तक हो पाया अस्पताल ले जाना। लेकिन मैंने सोचा कि क्या यह अपनी गाड़ी में बैठा के ले जाना, अस्पताल में इस समुदाय के इस बच्चे का इलाज करा देना यहीं तक सीमित है? यह इस तरह की परिस्थिति तो फिर आएगी, इसका कैसे होगा उपाय? और उस समय में मैंने बहनों को 10 पैसा चवन्नी बचाने की और एक मुट्ठी चावल, एक चुटकी बचाने का किया। आज आपको ताज्जुब लगेगा, जिसमें सरकार का कोई अनुदान नहीं होता है, 1.5 लाख बहनें और कोई इस तरह की बस्ती नहीं जिनमें उनके 10-20 लाख रुपए नहीं है। वो मां जो कई दिन तक उपवास में रहती थी, इस एक मुट्ठी चावल ने उस घर में एसपी पैदा कर दिया, उस घर में डीआईओस पैदा कर दिया, उस घर के बच्चे जो भूखे रहते थे, अनाथ बच्चे। तो यह शक्ति है, अपने मन की जो शक्ति है, अपने मन का जो सुविचार है, उस पर विश्वास का। तो हमें करना क्या है? अयम निजः परो व्यक्ति गरुणा लघुचेत साम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। सिर्फ वसुधैव कुटुंबकम कह देंगे तो हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो उसके लिए उदार चरित्र का हमें बनना पड़ेगा। और उदार चरित्रता क्या है? उदार चरित्र है क्या? उदार चरित्र दान देना ही उदार चरित्र नहीं है। जब एक रुग्ण, विक्षिप्त, व्यथित मां को, तो मैं तो इसलिए कह रहा हूं तो मैं बंद करूंगा, आप पूरा करो तो मैं पढ़ते जा रहा हूं। अच्छा, वो कहिए। मैं देखिए भाषा के उससे, ये मुझसे कह रहे हैं कि पूरा कर लीजिए, मैं समझ रहा हूं कि मेरे मन में जितनी चीजें हैं मैं सबको पूरा कर दूं। मैं इसमें लगा हुआ हूं और मैं इनसे पूछ रहा हूं तो ये कह रहे पूरा करिए, मैं फिर आगे बढ़ जा रहा हूं। चलिए, बहुत अच्छा। अनिल सुनील भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग बस एक बार ठहाका लगा दीजिए। यह भी हमें कभी कभी होता है। तो फिर लास्ट में सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा कि भद्रम कर्णेभ्यो शुण्याम देव। अच्छा सुने, भद्रं पश्येम, अच्छा देखें, ये दो चीज के प्रयास करिए, फिर तो आनंद ही आनंद है, प्रेम से बोलिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद,
बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो गजब कर।
बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। अभी मेरा निवेदन है, जैसा विषय है काम इन क्राइसिस, कैसे हम संकट के समय में संयमित जीवन जी सकते हैं अध्यात्म के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा। तो हमें राजयोग मेडिटेशन की अनुभूति कराने के लिए निवेदन है ब्रह्मा कुमारी अन्नपूर्णा बहन जी से। आप सब जोन कोऑर्डिनेटर हैं समाज सेवा प्रभाग के इंदौर से। बचपन से ही आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े और 34 वर्षों से आप राजयोग का अभ्यास करते हुए समाज को श्रेष्ठ बनाने में लगे हुए हैं और आज हम सभी को मेडिटेशन का अभ्यास कराने के लिए उपस्थित हैं अन्नपूर्णा बहन जी।
ओम शांति। परमपिता परमात्मा के प्रिय संतान, सम्मान्य मंच और इस ज्ञान सरोवर के परिसर में, सुंदर वातावरण में भारत तथा नेपाल से पधारे हुए आप सभी, सभा में विराजित समाज सेवी भाइयों एवं बहनों, हम काफी समय से चर्चा सुन रहे हैं और ये विचार हम सबको आता है कि समाज में दिन प्रतिदिन क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, इसे हम कैसे ठीक करें। और ठीक करने के लिए हम सभी अपनी अपनी रीति से प्रयास भी कर रहे हैं, मैं समझती हूँ आगे करते भी रहेंगे। लेकिन अगर इसी में थोड़ा सा हम एक सरल विधि, सही विधि अपना लें तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी हम समाज को परिवर्तन कर सकते हैं। और समाज तो क्या, पूरे विश्व में एक स्वर्णिम भारत रहेगा, ऐसा भारत हम सब मिलकर बना सकते हैं। और वह विधि है जो हम सब सुन रहे हैं, सुबह के रोज के सत्र में सुनते हैं, वह है अध्यात्म। हम सबके जीवन में अध्यात्म कितना जरूरी है यह हम सब समझ सकते हैं। हम सबके जीवन में अध्यात्म इतना जरूरी है जितना जीवन में श्वास। अगर श्वास है तो जीवन है, और श्वास नहीं तो जीवन समाप्त। इसी प्रकार अगर हम अपने जीवन में अध्यात्म अर्थात आत्मा का अध्ययन करना, और जब हम अपने आत्मा का अध्ययन करते हैं तो अध्ययन कैसे करें, वो परम पिता परमात्मा से हम अपना संबंध कैसे जोड़ें, अपने आप को परिवर्तन करने के लिए जरूरी होगा कि उस परम पिता परमात्मा से मुझे अपने आत्मा का संबंध जोड़ना होगा। और सबसे अच्छा संबंध, घनिष्ठ संबंध यदि है तो वह है पिता और पुत्र का। तो हम सबके पिता परमात्मा निराकार शिव, जिन्हें हम प्यार से बाबा शब्द से संबोधित करते हैं, तो शिव बाबा से हम अपना संबंध जोड़ते हैं तो हमारी खोई हुई विरासत पुनः हमें प्राप्त हो जाती है। एक छोटी सी बात याद आती है, एक बार की बात है, एक ऑफिसर था। ऑफिसर अपने घर में ही ऑफिस बनाकर अपना जरूरी कार्य कर रहे होते हैं। तो बच्चा घर में होता है और बहुत चंचल होता बच्चा, और चंचलता आकर के करता ऑफिस में। तो पिताजी को, ऑफिसर को काम जरूरी करना था, जल्दी करना था, अब क्या करे, बच्चा चंचलता कर रहा है। तो उन्हें सोचा कि इस टेबल पर विश्व का मानचित्र पड़ा हुआ था, और उनके मन में ये विचार आया कि विश्व का मानचित्र मैं इस बच्चे को टुकड़ा टुकड़ा करके दे देता हूँ, ये बनाने में बिजी हो जाएगा और मैं भी अपना जरूरी काम कर लूंगा। और ऐसा ही किया, उस विश्व के मानचित्र को टुकड़ा टुकड़ा करके और उस बच्चे को दे दिया, कहा बेटा अंदर जाओ और बना के लेकर के आना। लेकिन बच्चा बहुत चतुर था, वो अंदर गया उलट पुलट करके देखा तो उसमें एक मानव की एक छोटी सी उंगली उसको दिखाई पड़ी और उस उंगली के आधार पर एक मानव को तैयार किया और मानव के तैयार होते विश्व का मानचित्र तैयार हो गया। और दौड़े दौड़े पापा के पास जाता, कहता पापा पापा मैंने ये विश्व का मानचित्र बना लिया। पापा हैरान हो जाते हैं, इतना कठिन कार्य तुमने इतना आसानी से कैसे कर लिया। तब वो बच्चा बताता है कि पापा मैंने एक मानव को तैयार किया और विश्व तैयार हो गया। ठीक इसी प्रकार यदि हम अपने आप को अध्यात्म से जोड़कर तैयार कर लेते हैं तो हमें परिवार को, समाज को और विश्व को तैयार करने में, विश्व को बनाने में कोई मेहनत नहीं लगेगी, बहुत सहज और सरल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अपने अंदर के वैल्यूज जो छुपे हुए हैं उन्हें जागृत करें और अपने व्यवहारों में, अपने कार्य में, कर्म में लाएं, सहज हम अपने जीवन को श्रेष्ठ महान बना सकते हैं। तो चलिए हम उस परमपिता परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ें और अपनी विरासत, अपना अधिकार परमपिता परमात्मा से प्राप्त करें। आप सभी से निवेदन है थोड़ा अलर्ट होकर के बैठें, कंफर्टेबल पोजीशन में, और चारों तरफ से अपने मन बुद्धि को हटाकर विचार शक्ति मन को एकाग्र करें। इस देह में, शरीर में, मस्तक के मध्य विराजमान मैं एक दिव्य ज्योति हूँ, मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ, मुझ आत्मा का पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा हैं जो कि इस पांच तत्वों की दुनिया, फरिश्तों की दुनिया से भी पार छठा महातत्व जो कि ऊपर परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम के नाम से जानते हैं, और मेरे पिता परमात्मा परम धाम में जहाँ चारों तरफ लाल सा प्रकाश है, चारों तरफ शांति ही शांति है, जहाँ ना कोई आवाज, बात, कर्म कुछ भी नहीं, केवल और केवल महसूसता की शक्ति है, अनुभव कीजिए। यहाँ पर मैं आत्मा जुगनू के माफिक और मेरे पिता परमात्मा शिव बाबा जो परम ज्योति हैं, और महसूस कीजिए परम पिता परमात्मा शिव की अनन्य किरणें जो कि सुख, शांति, प्रेम, आनंद की किरणें हैं, वह मुझ आत्मा में समाती जा रही है, और मैं आत्मा अपने आप को भरपूर करती जा रही हूँ। सशक्त बनती जा रही हूँ। और परमात्मा शक्ति को अपने में धारण कर विश्व के रंगमंच पर मुझे देना है। और ऐसे लेते हुए वापस कर्म क्षेत्र पर जा रही हूँ और धीरे धीरे मैं आत्मा परमात्मा पिता से प्राप्त की हुई शक्तियों को पूरे विश्व में फैलाते हुए ये संसार में देते हुए इस ज्ञान सरोवर के हार्मनी हॉल में मैं आत्मा अपनी इस देह में मस्तक के मध्य विराजमान हो जाती हूँ और अनुभव कीजिए अपने आप को कि मैं आत्मा मस्तक के मध्य चमकती हुई शक्तिशाली ऊर्जा हूँ। और अब मैं यह संकल्प लेती हूँ जो परमात्मा से मुझे ऊर्जा मिली है उन शक्तियों को मैं अपने समाज में और पूरे विश्व में अपने व्यवहार में लाकर कर्म में लाकर प्रेरणा का स्रोत बनूंगी, प्रेरणा का स्रोत बनूंगी, प्रेरणा का स्रोत बनूंगी। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद अन्नपूर्णा बहन जी। और ये अभ्यास यहाँ करवाया गया है, आप इसका और अधिक लाभ लेने के लिए अपने नज़दीक के सेवा केंद्र पर जाकर के वहाँ लाभ ले सकते हैं और क्राइसिस में शांति का अनुभूति कर सकते हैं। अभी अध्यक्षीय संबोधन से पहले अमरावती कल्चरल ग्रुप की कुमारी परिणीति मांडले जी एक शिव डांस लेकर के आ रही है। परिणीति मांडले जी। कुमारी परिणीति जी का। अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा निवेदन है, आज के चेयरपर्सन आदरणीय भ्राता राजयोगी ब्रह्मा कुमार डॉक्टर प्रेम मसंत जी से, आप डॉक्टर एंड राजयोग प्रैक्टिशनर हैं, आपने 1979 में मेडिकल कॉलेज इंदौर से एमडी रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट किया, 1981 से और 90 तक आप गायना साउथ अमेरिका में कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट रहे, 1991 से 93 तक आप एसजीपीटी कैंसर हॉस्पिटल इंदौर में पुल ऑफिसर के रूप में काम किया, 1994 से 96 तक आप कैंसर हॉस्पिटल अकोला महाराष्ट्र में मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे, 1997 से 2006 तक आपने ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर माउंट आबू में आप कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के रूप में आपने काम किया, 2007 से 8 तक आप ट्रॉमा एंड आई हॉस्पिटल आबू में मेडिकल सुपरिटेंडेंट के रूप में आपने सेवाएं दी, 2009 में और अब तक आप ब्रह्मा कुमारी के में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने विभिन्न कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर के 8000 से अधिक अपने वक्तव्यों के द्वारा विभिन्न लोगों को लाभान्वित किया। आप कॉरपोरेट सेक्टर में TCS, विप्रो, L&T, विभिन्न कंपनीज में आपने अपनी वक्तव्य के माध्यम से उनको पॉजिटिव थिंकिंग और लाइफस्टाइल के बारे में अपनी सेवाएं दी, और गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपने RBI, SBI, नाबार्ड, योग साधना इंस्टीट्यूट, DIPS, इसरो, इंडियन रेलवे, TPS, एयरपोर्ट अथॉरिटी, CWC, चिंतन शिविर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, कैट इंदौर, BSNL, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, भेल, LIC, इंडियन नेवी आदि आदि विभिन्न संस्थानों में आपने अपने वक्तव्य से लोगों को लाभान्वित किया, और विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में PGI चंडीगढ़, IIT रुड़की, IIM कालीकट, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट त्रिवनंतपुरम, बेंगलोर, पुणे, जबलपुर, जामनगर, लुधियाना, NIMS मॉडर्न डेंटल कॉलेज, वोलगोतिया इंजीनियर कॉलेज और ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, अपोलो हॉस्पिटल, मेडविन हॉस्पिटल, विभिन्न हॉस्पिटल, विभिन्न हॉस्पिटल और विभिन्न यूनिवर्सिटीज में आपने अपनी सेवाएं दी हैं, और हम सभी का परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में आप अपने अध्यक्षीय संबोधन के रूप में उपस्थित हैं। मेरा निवेदन है डॉक्टर प्रेम वसंत भाई जी से।
ओम शांति। सम्मानीय मंच, भाइयों और बहनों, काफी देर से हम लोग सुन रहे हैं और ये दिखाता है कि हमारी पीच लेवल काफी अच्छी है, तो क्यों नहीं हम वो बहन जब डांस कर रही थी, मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि कितनी फ्लेक्सिबल इलास्टिसिटी थी। तो अभी हम भी थोड़ा खड़े हो जाएं और अपने को थोड़ा मोमेंट दें। एक सॉन्ग समाज सेवा से जुड़ा हुआ है, अन्नपूर्णा बहन ने काफी अच्छा बताया कि जब हम सब मिलकर स्वपरिवर्तन करेंगे तो हमारा समाज, परिवार, विश्व अच्छा होगा।
भारत फिर भरपूर बनेगा, फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी, हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी, कृष्ण कन्हैया था राधा सी हर बाला होगी, सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी, हर बालक कृष्ण कन्हैया था राधा सी हर बाला होगी, सुख
शांति। मैं एक बहुत अच्छे कोटेशन से शुरू करता हूं। ऑनरेबल डॉक्टर राधाकृष्णन, जो कि भारत के प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि सिविलाइजेशन का बिल्ड स्प्रिट से होता है। सिविलाइजेशन इज एन एक्ट ऑफ स्प्रिट। जब तक हमारे अंदर स्प्रिट है, कॉन्शियसनेस है, तब तक हम कुछ भी कर सकते हैं। क्राइसिस को देखें तो कल ही एक बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया था, पूरे वर्ल्ड में सर्वर डाउन हो गया था, काफी फ्लाइट्स हैंग अप हो गई थी, पैसेंजर रुके हुए थे, पर जो शांत रहे उसमें ठीक रहे और वापस सेट हुआ। कोरोना में भी देखा कि जो लोग शांत रहे, खुश रहे, वो जल्दी ठीक हो गए, और जो डर गए उनको ज्यादा नुकसान हुआ। जितना भी कोरोना का नुकसान देखा, उसका कारण था कहीं ना कहीं वो व्यक्ति डर गए। और इस समय सबसे बड़ा क्राइसिस मेडिकल साइंस में आ गया है, यंग हार्ट अटैक। पिछले 3 सालों में यंग हार्ट अटैक बहुत कॉमन होते जा रहे। दूसरा क्राइसिस है डिप्रेशन का, तीसरा क्राइसिस है सुसाइडल टेंडेंसी का, ये बढ़ता जा रहा है, और इसके कारण कई तरह के नुकसान हो रहे हैं। मेडिकल में देखें, जब ईसीजी लेते हैं तो ईसीजी का पैटर्न यूं रहता है, ईसीजी कभी फ्लैट नहीं आता। अगर फ्लैट ईसीजी आ गया यानी तो परमात्मा ने भी हार्ट को कहा, लंग्स को कहा, चलते रहो। जितना हार्ट पंप काम करेगा, जितना लंग काम करेगा, उतना बॉडी अच्छी होगी, ऑक्सीजन लेवल अच्छा होगा। अभी T20 वर्ल्ड कप मैच में इंडिया ने जीता, मैच कभी इधर था कभी उधर था, पर एक कैच सूर्य कुमार ने जो पकड़ा उससे मैच टर्न हो गया। अब उसके ऊपर एनालिसिस हो रहा था कि क्या हुआ, बॉल बाहर जा रहा था, पुश करके अंदर किया, वो अंदर आया और फिर पकड़ा। उसका एनालिसिस हुआ कि क्या फैक्टर थे, और वो वन ऑफ द बेस्ट कैच अभी तक का माना जाता। उसमें एनालिसिस निकला 2 फैक्टर, अवेयरनेस एंड अटेंशन। अगर अवेयरनेस अच्छी है, कॉन्शियस लेवल अच्छा है, अटेंशन अच्छा है, तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी टॉप लेवल तक जा सकते हैं। और आज सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट अवेयरनेस की है। जितना मैं कॉन्शियसली अवेयर हूं, मैं अपने माइंड, मन, बुद्धि, संस्कार का अच्छी तरह उपयोग कर सकता हूं। माइंड यानी एम, इंटेलेक्ट यानी आई, संस्कार यानी एस, MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मेरे ब्रेन के द्वारा काम कर रहा है। मेरे अंदर सॉफ्टवेयर है और मेरा बॉडी हार्डवेयर है। मेरे सॉफ्टवेयर में जो हो रहा है वो हार्डवेयर में हो रहा है। इसीलिए अभी कहा गया हमारी इंटेस्टाइन सेकंड ब्रेन है, एक ब्रेन ये है, एक ब्रेन मेरी आते हैं। मेरी आतों में जो हो रहा है वो ब्रेन में हो रहा है, और जो ब्रेन में हो रहा है वो आतों में हो रहा है। इसीलिए इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं। शुरू करता हूं, एक महात्मा जी जा रहे हैं अपने चेलों के साथ, एक जगह वो पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, महात्मा जी एक चेले को कहते हैं पानी भर के लाना। पहले इस पेड़ के 20 फीट आगे दो राउंड लगाओ। चेले ने राउंड लगाए दो। फिर महात्मा जी ने कहां से हवा आ रही थी ठंडी, तो चेले ने कहा नॉर्थ साइड से। तो बोला वहां कुछ ना कुछ होगा। तो चेला गया पानी भरने, वहां तालाब था और तालाब में देखा कई लोग नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, काफी मिट्टी आ गई थी। थोड़ी देर रुका, देखा लोग नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, पानी साफ नहीं है। तो वापस आकर महात्मा जी को बोला कि पानी साफ नहीं था, इसलिए पानी भरकर नहीं लाया। महात्मा जी ने कहा चलो बैठ जाओ, एक घंटा आराम करो, फिर एक घंटे के बाद बोला अब जाओ पानी भरने। वो फिर गया, देखा पूरा पानी साफ था, मिट्टी जो थी नीचे बैठ गई थी, वो पानी भर के आया। महात्मा जी ने कहा देखो, जब हलचल यहां होती है माइंड में नेगेटिविटी की, स्ट्रेस की, तो पूरा कचरा ऊपर आ जाता है, और जब ये हलचल शांत हो जाती है तो हमारी नेगेटिविटी बैठ जाती है। पानी को भी कुछ नहीं करना पड़ा, पानी सेटल डाउन हो गया। इसी तरह से ह्यूमन नेचर में पॉजिटिविटी नेगेटिविटी चलती रहती है। हरेक के अंदर दोनों प्रोग्राम है, पर जैसे ही मेरे नेगेटिव सेटल डाउन हो जाते हैं, मेरी पॉजिटिविटी ऊपर हो जाती है। डॉक्टर इमोटो एक जापान के साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने पानी के ऊपर रिसर्च किया और दो ग्रुप बनाए। एक ग्रुप ने पानी को पॉजिटिव अफर्मेशन दिए, दूसरे ग्रुप को बोला आप नेगेटिव बोलो, और दोनों पानी का एनालिसिस किया गया। जिस पानी को नेगेटिव बोला गया उसके अंदर के क्रिस्टल काफी खराब थे, और जिस पानी को पॉजिटिव बोला गया आई लव यू, यू आर सो गुड, उस पानी के क्रिस्टल बहुत अच्छे बने। अब अगर हम इसी को अपने ऊपर अप्लाई करें, हमारे बॉडी में भी ऑलमोस्ट 45-70% वाटर है, ब्रेन में काफी वाटर है। अगर हम भी अपने को शांत करके पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं, हम भी अपने को हील कर सकते हैं। 1/3 हीलिंग बॉडी में नेचुरल होती है। कुछ नहीं करें, शांत होकर बैठ जाए तो बॉडी हील करती है। क्राइसिस का दो मीनिंग है, एक क्राइसिस का अर्थ है डेंजर और एक क्राइसिस का अर्थ है अपॉर्चुनिटी। मेरे को डेंजर भी देखना है और मेरे को उसमें अपॉर्चुनिटी क्या है उसका भी अवेयरनेस चाहिए। कैसे मैं डेंजर को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करता हूं वो मेरे ऊपर है। आज की दुनिया में क्राइसिस ऑल ओवर है, तरह तरह के क्राइसिस है। मेडिकल साइंस में देखूं तो फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 हो गया, मेरे टाइम पर वो काफी नीचे था, अब वो नंबर टॉप पर है। और उसका कारण भी देखा कि कहीं ना कहीं जो इमोशनल स्ट्रेस है वो बढ़ता जा रहा है। ब्रेस्ट कैंसर का प्योरली कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस और उसका कारण है इमोशनल स्ट्रेस। तो जितना हम शुरू से बच्चों को पीसफुल रहना सिखाएंगे, शांत रहना सिखाएंगे, इमोशनली स्ट्रांग करना बताएंगे, तब वो बच्चा आगे चलकर बेटर सिटीजन होगा। फैमिली का अर्थ ही है FAMILY। फैमिली का अर्थ है फादर एंड मदर आई लव यू। और सबसे बड़ा इमोशन, सबसे पावरफुल इमोशन लव है, पीस है, खुशी है। ये तीन कैरेक्टर अगर है व्यक्ति में तो वो हेल्दी रहेगा। और ये तीन कैरेक्टर डाउन हुए तो बीमार होगा। हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे हार्मोन ऊपर नीचे होते हैं जब तीन का लेवल ऊपर नीचे होता है। ये देखा गया हमारे अंदर डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, ये हैप्पी हार्मोन है। जब हम खुश रहते हैं तो ये हार्मोन का लेवल बढ़ता है। जब हम अशांत रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो ये लेवल डाउन होते हैं। डिप्रेशन में तीनों की लेवल लो हो जाती है। और जब हम अपने को प्यार करते हैं तो तीनों की लेवल बढ़ जाती है। इसलिए रोज सुबह उठकर अपने को प्यार करिए, और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो प्यार करिए, हाथ ऊपर करें और कहें आई लव यू, आई लव यू, आई एम ओके, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम ब्यूटिफुल। जितना मेरी सेल्फ टॉक अच्छी होगी उतना पीसफुल होऊंगा। क्राइसिस को तभी टैकल कर सकते जब मैंने बहुत काल का माइंड को ट्रेन किया हुआ है। अगर माइंड ट्रेन नहीं है, सिचुएशन एकदम आ गई तो कुछ भी होता है। और ये कॉमन होता जा रहा है। हमारा इमोशनल ब्रेन ओवर एक्टिव हो गया है, थिंकिंग ब्रेन कम काम कर रहा है। और लोग इसीलिए डिसीजन जो ले रहे हैं इमोशनल ब्रेन से ले रहे हैं, और उससे कभी कभी बहुत नुकसान हो जाता है। और आज की दुनिया में वही आगे बढ़ेगा, वही सर्वाइव करेगा। पहला, एडॉप्टेबिलिटी उसकी अच्छी है। एडॉप्टेबिलिटी का अर्थ है फ्रीडम फ्रॉम कंडीशन रिस्पॉन्स। मेरे सामने जो प्रॉब्लम आया है उसको मैं नए तरीके से टैकल कर रहा हूं, पुराने तरीके से टैकल नहीं कर रहा हूं। इसीलिए रोज कुछ नया अपने अंदर डालो। जब माइंड वीक होता है सिचुएशन प्रॉब्लम बन जाती है, जब माइंड बैलेंस में रहता है सिचुएशन चैलेंज बन जाती है, और जब माइंड स्ट्रांग हो जाता है सिचुएशन अपॉर्चुनिटी बन जाती है। और कैसे हम उसको अपॉर्चुनिटी करें, इसका बेस्ट एग्जांपल श्रीकांत बोला। आंध्रा के एक शहर में पैदा हुआ, बचपन से देख नहीं पाता था, ज्यादा इम्पेयर्ड विजन था, फिर भी रोज शहर में पढ़ने आता है गांव से पैदल। पढ़ता गया, टेंथ में बहुत अच्छे नंबर आए। स्कूल ने कहा हम पढ़ा नहीं सकते। फिर उसने लीगल बैटल लड़ी और 6 महीने के बाद बैटल जीत गया। फिर अच्छे नंबर आए 12th में। फिर स्कूल ने कहा हम पढ़ा नहीं सकते। उसने MIT USA को लिखा लेटर और USA में MIT में उसकी एडमिशन हो गई। और वहां से ग्रेजुएशन करने के बाद उसके पास 2 ऑप्शन थे, इंडिया आ जाए या वहीं सेटल हो जाए। उसको ऑप्शन वहां का पैकेज बहुत बड़ा मिल रहा था। MIT ऐसा वर्ल्ड का कॉलेज है जहां से बच्चा निकलता है तो उसकी अपॉर्चुनिटी 100% रहती है। उसने कहा नहीं, मैं इंडिया आऊंगा। और इंडिया आकर उसने बोलेंट इंडस्ट्री हैदराबाद में डाली जिसमें रिसाइकल प्रोडक्ट का यूज करते हैं, और अब वो उस कंपनी का CEO है। उसने कहा मैंने अपने ब्रेन को हार्डवायर कर दिया, मेरे लिए अब क्राइसिस कुछ नहीं है, क्राइसिस मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। उस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना ये हमने हमारी दादियों से सीखा। हमारी एक बड़ी दादी सर्जरी के लिए बॉम्बे गई, उनकी मेजर सर्जरी हुई। डॉक्टर पहले दिन जाते हैं देखने कि क्या कंप्लेन है। डॉक्टर सोच रहे थे कि कंप्लेन होगी दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है। जैसे ही डॉक्टर अंदर आए, दादी जी ने पूछा डॉक्टर आप कैसे हो, हाउ आर यू डॉक्टर। और ये देखकर डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य लगा। डॉक्टर को नहीं मालूम था ये कौन है। फिर डॉक्टर माउंट आबू आए और हॉस्पिटल, ग्लोबल हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन हुआ। एनालिसिस करें दादी क्यों गई बॉम्बे, दादी की सर्जरी क्यों हुई, इसलिए हुई कि हॉस्पिटल बनना था। अगर दादी हॉस्पिटल बॉम्बे नहीं गई होती तो हॉस्पिटल नहीं बनता। तो हर कारण के पीछे, हर क्राइसिस के पीछे पर्पस है, मिशन है, और उस पर्पस को आइडेंटिफाई करना हमारा काम है। और ये देखा गया कि जिन आत्माओं में पर्पस रहता है, मिशन रहता है, वो लोग लंबी आयु तक जीते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल था रॉकफेलर। रॉकफेलर एक अमेरिकन बिजनेसमैन रहा, उसकी ऑयल रिफाइनरीज थी, वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट बिलियनर ट्रिलियनर था। 53 साल की उम्र में उसको एक प्रॉब्लम आ गया। डॉक्टर्स ने कहा ज्यादा टाइम नहीं है, 2 साल 3 साल। रॉकफेलर ने सोचा मैं क्या करूंगा, इतना पैसा। तो उसने अपना सब पैसा एक ट्रस्ट बनाकर रख दिया। सब उसके मास्टर्स आ गए, अकाउंटेंट्स आ गए, CA आ गए, और एक ट्रस्ट बना दिया। जैसे ही ट्रस्ट बना, 3 साल के अंदर उसकी बीमारी ठीक हो गई। रॉकफेलर जो 53 ईयर ओल्ड था, 98 ईयर्स तक पूरी तरह से जिंदा रहा। अब एनालिसिस करें, 45 ईयर्स ओल्ड रहा, क्या कारण था, क्या कारण था। जैसे ही उसका फ्लो चालू हुआ, पैसे का यूज होने लगा, रॉकफेलर ट्रस्ट आज भी वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ट्रस्ट है। रॉकफेलर ट्रस्ट से ही पेनिसिलिन, वैक्सीनेशन, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज बनी, और आज भी वो बहुत पावरफुल काम हो रहा है। जैसे ही उसका फ्लो चालू हुआ, दुआएं मिलने लगी, ब्लेसिंग मिलने लगी, वाइब्रेशन मिलने लगे, और वो ठीक हो गया। तो हमारे बॉडी में इतनी कैपेसिटी है कि जब हम हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं, हमारी हेल्थ अच्छी होती है। इसीलिए लक्ष्मी को दिखाया गया ऐसा, पैसा आधा है जा रहा है। हम क्या करते हैं लक्ष्मी को, सर क्या कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहा हूं। तो मेरा माइंड भी मेरे जीन्स को कहता है तू भी डिपॉजिट कर, तो मेरा जीन्स एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को पकड़कर, बैड कोलेस्ट्रॉल को पकड़कर कोरोनरी में डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं। दैट इज वाई सीएडी इज नंबर वन किलर इन इंडिया। तो ठीक होना है तो क्या करना है, उसको चलने देना है। जितना करेंसी चलेगी उतनी हेल्थ अच्छी होगी, जितना फ्लो होगा उतना एनर्जी आएगी। तो अल्टीमेटली इस समय शांत रहने का अर्थ है डिसीशन पावर। मेरी निर्णय शक्ति क्या है? आज की दुनिया में पढ़ाई कुछ भी पढ़ लें, मेरा आईक्यू लेवल कुछ भी हो, अगर मेरा डिसीशन पावर वीक है, निर्णय शक्ति वीक है, 50-50 होगा। अभी एक बच्ची ने कुछ महीने पहले घर में थी और उसकी छोटी बहन साथ में थी, घर का दरवाजा खुला रह गया, कुछ बंदर मंकीस अंदर आए और उसको अप्रोच करने लगे। वहां पर उस बहन के पास, 13 साल की बहन, एलेक्सा था। उसने एलेक्सा को कहा कुत्तों की आवाज करो। एलेक्सा ने कुत्तों की आवाज की, जैसे ही कुत्तों की आवाज हुई मंकीज भाग गए। उसका वीडियो बहुत वायरल हुआ। उसको देखकर मिस्टर आनंद महिंद्रा एंड महिंद्रा के मालिक मिस्टर महिंद्रा ने उस बच्ची को कहा तू अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, तेरा जॉब मेरी कंपनी में तैयार पड़ा। क्या फैक्टर था? प्रेजेंस ऑफ माइंड, डिसीशन पावर, निर्णय शक्ति। और ये तब आता है जब मन शांत रहता है। जब मन और बुद्धि एक साथ काम करती है, मेरे संस्कार मेरे को तंग नहीं कर रहे हैं तो मैं डिसीशन ले पाऊंगा। नहीं तो हमारा जो मेमोरी डाटा है, जो पड़ा हुआ है, वो डराता रहता है। लॉर्ड गौतम बुद्धा ने कहा था सबसे बड़ा शत्रु आदमी का कौन है? लॉर्ड गौतम बुद्धा ने कहा उसका अपना नेगेटिव थॉट। और आज ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है साइकोलॉजी में। नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, मेरे को डरा रहे हैं, उसको कैसे ठीक करना, उसमें मेडिटेशन का रोल है। जितना मेरी पॉजिटिव थिंकिंग होगी, मेडिटेशन अच्छा होगा, मेरा मन और बुद्धि स्ट्रांग होगा। एम्पावरमेंट का अर्थ ही है यू आर द कंट्रोलर ऑफ योर लाइफ, योर थॉट्स वर्ड्स एक्शन अंडर योर कंट्रोल। लास्ट में मैं यही कहूंगा कि जो दूसरा नुकसान होता जा रहा है उसका कारण है इमोशनल अनस्टेबिलिटी। अभी सेल्फी के कारण ऑलमोस्ट 2-3 महीने में इतने एक्सीडेंट हुए, इतने लोगों ने शरीर छोड़ा। और मैं सोच रहा था क्या कारण है, सामने दिख रहा है पानी आ रहा है फिर भी सेल्फी ले रहा। अभी एक यंग गर्ल का दिखाया 2 दिन पहले ही, कार में बैठी है और दूसरा भाई उसका वीडियो ले रहा है और गलती से कार का एक्सलेटर दब गया, नीचे खाई में गाड़ी गिर पड़ी। अब ये क्या दिखा रहा है? जो स्विंग आया है उसका कारण है इमोशनल अनस्टेबिलिटी। और हमें इमोशनली स्टेबल बनना पड़ेगा, और उसके बिना कोई ना कोई हम उस ट्रैप में फंस जा रहे हैं। और ये नया वर्ड आया है इमोशनल हाइजेकिंग। तो हमें टॉक्सिन को तो डिटॉक्सिफाई करना है डाइट का, पर इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन भी करना है, और वो हमें सीखना पड़ेगा। और उसकी मेथडोलॉजी टूल एंड टेक्निक हमारे अंदर ही है। ऑप्रा विनफ्रे ने कहा था, जो कि एक सिंपल अफ्रीकन फैमिली में पैदा हुई और टॉप पर चली गई, आज वो वर्ल्ड की बिलियनर ट्रिलियनर है, टीवी शो की एंकर है, लोग पैसा देकर टीवी शो देखने जाते हैं। लोगों ने पूछा आपका सक्सेस मंत्र क्या है, ऑप्रा विनफ्रे ने कहा मैं अपने अंदर का इंट्यूजन को यूज करती हूं। इंट्यूजन का अर्थ है गट फीलिंग को यूज करती हूं। कभी कभी लॉजिकल माइंड नहीं काम करता, इमोशनल माइंड नहीं करता, इंट्यूजन काम करता है। और कोरोना में इसने काफी मदद करी। हम सभी देखते हैं जब भूकंप आता है, अभी जब उत्तराखंड का देख रहा था मैं, जैसे ही लैंडस्लाइड हुई एक कुत्ता बचता हुआ भागता हुआ चला गया, यानी एनिमल को भी पता लग गया कुछ होने वाला है और वो वहां से निकल गया। तो ह्यूमन नेचर में, ह्यूमन सोल में इतना पावर है, अगर वो शांत रहता है तो कैचिंग पावर आता है, इंट्यूजन काम करता है। तो उसको हम करते रहे और क्राइसिस को ठीक करते रहे। क्राइसिस आएंगे, स्ट्रेस आएगा, उससे बच नहीं सकते, चैलेंजेस आएंगे, पर हमें उसको ठीक करने का रास्ता सीखना पड़ेगा, सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे और इस चेंजिंग वर्ल्ड में मेरे को सरवाइव करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, आपने क्राइसिस का डेंजर और अपॉर्चुनिटी दोनों मीनिंग बड़े विस्तार से बताया और नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने की विधि और उनसे होने वाले नुकसान आदि के बारे में विस्तार से चर्चा की। आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, एक बार डॉक्टर साहब का जोरदार तालियां बजा करके उनका अभिनंदन, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सभी का धन्यवाद करने के लिए मैं निवेदन करूं दीपेश भाई से, उससे पहले आज के हमारे माननीय अतिथि गणों को ईश्वरीय सौगात दे करके सम्मानित करेंगे। बहन सालू दुगल, अमर शैलजा दीदी जी, मोमेंटो दे करके सम्मान कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब, हमारे दूसरे अतिथिगण भूभूति मिश्रा जी को, धन्यवाद के लिए मेरा निवेदन है ब्रह्मा कुमार दीपेश भाई जी, आप ORC कोऑर्डिनेटर हैं सोशल सर्विस विंग के, और पिछले 30 वर्षों से आप बाबा की सेवा में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दीपेश भाई से
ओम शांति। ये धन्यवाद का जो एक परंपरा है भारतीय समाज में, बहुत अच्छे है जो एक दूसरे के स्नेह में बांध लेते हैं। इसमें हम इस धन्यवाद का कड़ी में पहले हम धन्यवाद करते हैं उस परमपिता परमात्मा को, जिसने असीम कृपा से हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनका स्नेह है, उनका हमने जैसा हमारा माता पिता बंधु स्वामी सहाय वो हमारा है, तो उस परमपिता परमात्मा का असीम कृपा से हम आज इस सुंदर सब परिसर में सब एकत्रित हुए हैं, तो उस परमपिता परमात्मा को असीम धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद, दिल के गहराई से धन्यवाद है। फिर इस धन्यवाद का अगली कड़ी में आज का चेयरपर्सन डॉक्टर प्रेम मसंद भाई जी, जो आप माउंट आबू में रेस करते हैं, आप डॉक्टर भी है, सुंदर से वक्ता भी है, और आप मेडिटेशन प्रैक्टिशनर भी है। आपका जो सुंदर विचार हम अभी सुन रहे थे, जिसमें हमारा बहुत सुंदर प्रेरणा मिला, इंस्पिरेशन मिला, आगे हमें क्या करना है उसके गाइडेंस मिला, आपको इस ईश्वरीय परिवार में बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। फिर अगली कड़ी में आज के मुख्य अतिथि बहन शालू जी, जो आप आप दिल्ली से पधारे हैं, आप दृष्टि उत्थान ट्रस्ट और फिजियोलॉजिस्ट है। आपका सुंदर से वक्तृता सुन के हम लोग का बहुत प्रेरणा मिले, आप समाज में बहुत क्षेत्र में अच्छे अच्छे कर्म करते हैं और लोगों को प्रेरित करते हम कैसे अपना जीवन को सुंदर बनाए, सच बनाए और अच्छे बनाए। तो आपको भी इस ईश्वरीय परिवार में बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया है, धन्यवाद है। फिर आज का मुख्य अतिथि भाई विभूति कुमार मिश्रा जी, प्रेसिडेंट ऑफ अखिल भारतीय रस्नातक समाज सेवा का प्रेसिडेंट है, आप यूपी मिर्जापुर से पधारे हैं। इस सुंदर सा परिसर में आप जरूर ईश्वरीय गोद का आनंद भी लिया होंगे और आज हमारा बीच में अपना जो अनुभव सुनाए, समाज के प्रति जो हमारा दायित्व है वो सुनाए, उसके लिए हम आपका आभारी है, आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर आगे बढ़ते हुए जाते कि आज का हमारा मुख्य वक्ता बहन जी शैला बहन जी, आप अपना आप भोपाल जोन से अपना जूनल क्वालिटेटर है समाज सेवा प्रभाग के, आप सुंदर सा वक्तृता देके हमें अपना जीवन को कैसे सच बनाए, पूर्व के साथ कैसे जोड़ सके, अपना समाज को अच्छा कैसे बनाए और हमारा जीवन को सुंदर कैसे बनाए, इस ऊपर आपने जो हमें प्रकाश डाला उसमें हमारा जीवन को परिवर्तन करने का जो प्रेरणा मिला उसमें आपका धन्यवाद है, धन्यवाद है, शुक्रिया है। फिर बहन अन्नपूर्णा जी, जिन्होंने प्रभु से जोड़ने का सुंदर सा मेडिटेशन कराया, कैसे हम प्रभु के साथ जोड़ सके, प्रभु के साथ हम अपना संबंध बना सके, मेडिटेशन के हमारा मनोबल बढ़ सके, इसके ऊपर हमने प्रकाश डाला है। आपको हमें आप इंदौर से पधारे हैं, आप जूनियर सब जोन कोऑर्डिनेटर है समाज सेवा प्रभाग के, आपको भी दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। फिर बाबू भाई जो आप रीजनल कोऑर्डिनेटर है भूज के, आप सुंदर सा एक्सपीरियंस सुना के अपना जीवन का जो अनुभव है वो सबसे ज्यादा काम करता है, अब प्रैक्टिकल अनुभव सुना के हम सभी को प्रेरित किया, उत्साह बढ़ाया और बाबा के प्रति जो एक फेथ है उसको बढ़ाया। तो हम कैसे हमारे कितना भी परिस्थिति हो, अगर हम बाबा के प्रति उस परमपिता परमात्मा के प्रति हमारा असीम भक्ति है, हमारा असीम हमारा दृढ़ निश्चय है, तो हम किसी भी परिस्थिति में कोई भी परिस्थिति में हम अपना पार हो सकते हैं, ये हमें अनुभव से सुनाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। फिर आज का इस मन संचलन में भाई हमारा सुनील भाई जी, जो सुंदर मन संचलन करके आप सभी को सुंदर सा प्रोग्राम के लिए प्रेरित किया और अच्छे तरह से आपने मन संचलन किया, आप हरियाणा के स्टेट कोऑर्डिनेटर है और हमारा मित्र भी है, आपको दिल के गहराई से धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। और फिर सभा में उपस्थित सभी भारत के कोने कोने से आए हुए भाई और बहनों, समाज सेवी, प्रभु प्रेमी और नेपाल से आए हुए भी सभी भाई और बहनें, प्रभु प्रेमी, समाज सेवी सभी को दिल के गहराई से धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। ओम शांति।
और धन्यवाद करने वाले दीपेश भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सभी दो मिनट ईश्वर पिता की याद में बैठेंगे और आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होगा।